हे महाराज, आप विचार करो, जिन्होंने विराट को मारा, जिन्होंने कबंद को मारा, जिन्होंने खर को मारा, वे राम अपने अनुज लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव और असंख्य बांदरों के साथ पुल को बनाकर पुल के ऊपर आराम से टहलगी करते करते वे आपके लंका के अंदर घुस चुके हैं और एक एक बांदर में सारी लंका को ध्वस्त करने का बड़ा भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसा युद्ध होगा महाराज जैसा युद्ध भूतो न भविष्यति, हुआ न होगा। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, आप जितना जल्दी हो सके आप सीता को राम को समर्पित कर दीजिए। या तो आप सीता को राम को समर्पित कर दीजिए या फिर अपनी छाती को तान करके राम के बाणों को छाती में प्रवेश करने की अनुमति दे दीजिए। एक काम तो करना पड़ेगा, या तो सीता को राम जी के पास जाने की अनुमति दो या राम के बाणों को अपने छाती में लगने की अनुमति दो। दो में से एक अनुमति देनी पड़ेगी। लाल नेत्रों से वाला रावण कहने लगा, अशोक हमने तुमको राम की सेना में गुप्तचरी करने के लिए भेजा था, हमने तुमको सुग्रीव को शिक्षा देने के लिए भेजा था, उल्टा तुम हमको ही शिक्षा देने लगे हो। यदि माम प्रतिबुद्धेरन युद्धेरन, छपा हुआ ऐसा ही, यदि माम प्रति युद्धेरन देव गंधर्व दानवा, अरे सुन सुख तू क्या बोलता है, तेरी जगह देवता भी आए, गंधर्व भी आए, दानव भी आए और वो मुझे कहे कि रावण एक तरफ सीता है एक तरफ युद्ध है, तुम दोनों में किसका चयन करना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा कि मैं युद्ध करूंगा और सीता नहीं दूंगा। तुम लोग क्या बात करते हो, ये मेरे बाण राम को मारेंगे कि राम के बाण मुझे मारेंगे? तुम्हारी गणित को तुम ठीक ढंग से बना करके बोलो। मेरे बाण जब से मैंने तपस्या करके इनको प्राप्त किया है तब तक अभी तक कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जिससे मैं युद्ध करता और जिसके खून मेरे बाण पीते, प्यासे मेरे बाण। अब राम के लक्ष्मण के सुग्रीव के बांदरी सेना के खून से ये शांत होने वाले हैं। मैं सूर्य को वश में कर सकता हूं सुख, सागर का वेग मेरे दृष्टि करते ही शांत हो सकता है और वायु मेरे सामने है वहां रुक सकती है। कौन होते राम, नहीं जानता मैं किसी राम बाण को, ये मेरे बाण राम से बात करेंगे, मैं राम से बात नहीं करूंगा। राम स्वयं आकर मुझे कहेगा कि रावण सीता को तुम ले लो और प्राणों को मुझे दे दो। ये राम पुल जो बनाया है ये पुल किस लिए बनाया है? ये वापस लौटने के लिए बनाया है, क्योंकि युद्ध के अंदर रावण के युद्ध के सामने राम घायल हो जाएगा, चला नहीं जाएगा। तब ये किस प्रकार से इसको ले जाए, तब ये वापिस जाने के लिए पुल बनाया है। शोक पुल बना करके सेना आगे डर दिखाते हो, मेरे शब्द मेरे धनुष के टंकार को सुनकर के राम यूं ही चला जाएगा। वदिष्याम्यहम् रणे, मैं राम से युद्ध में बात करूंगा। रावण बाणों से बात करता है, शोक बाणी से क्या बात करेगा? इंद्र से बड़ा तो कोई योद्धा नहीं है ना, इंद्र तो मेरे बेटे से हार गया, तो मेरे बेटे से हारा हुआ इंद्र है, मैं कितना महान हूं इसका अंदाजा तुम इतने से ही लगा सकते हो। इस प्रकार से शुक ने बिचारे ने अपनी तरफ से पूरी बात कह दी। इधर सारी सेना लंका के अंदर बढ़ गई है। रावण के दो मंत्री, एक शुक और सारण, ये दोनों अकस्मात आए। महाराज अभूतपूर्व कार्य हो गया, सागर के ऊपर एक बहुत विशाल पुल बन गया, समग्र सागर को मानो उन्होंने आक्रांत कर लिया हो। लंका तक ये पुल बन गया, असंख्य बांदरों की सेना धड़ाधड़ लंका में प्रवेश कर रही है। मैं क्या बताऊं कितना इनका परिमाण है, मैं बता नहीं सकता हूं। रावण ने कहा, अरे सुख सारण सुनो, लंका के ऊपर पुल बन गया है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। तुम हमको ये बताओ कि कौन बानर कैसा है, कितनी शक्ति वाला है। राम सुग्रीव किनकी बात मानते हैं और सागर कौन से बानर ने बनाया है, राम के पास में क्या ताकत है और राम लंका में क्यों आया है, लक्ष्मण की क्या इच्छा है, बानरों के राजा सुग्रीव हमसे क्या चाहते हैं और इन बानरों के मन में हार्दिक इच्छा क्या है, आप हमको बताइए। तो बानर रूप धारण किए हुए शुक और सारण जो कि बंदरों की सेना में गए हुए थे, वे बंदरों की सेना में से जाकर के और वापिस वो जब बंदरों की सेना में गए तो उस समय में विभीषण ने उनको देख लिया। विभीषण ने देख करके और कहा, महाराज सुग्रीव ये दो बानर इनका नाम मैं जानता हूँ, एक का नाम शुक है एक का नाम सारण है, इनको पकड़ लो, ये हमारे गुप्तचर करने के लिए गुप्तचरी करने के लिए आए हैं। शुक और सारण को पकड़ लिया, शुक और सारण जोर उनकी बात सुनकर के राम जी ने उनको छुड़ा दिया और राम जी ने कहा कि क्यों आए भाई, कि महाराज हमको रावण ने भेजा, हम रावण के गुप्तचर है, हमको रोटी मिलती है तनख्वाह मिलती है उसकी सेवा के लिए आए। देख ली सेना, सेना में जो देखना था वो देख लिया, नहीं देखा हो तो वो और देख लिया हो, और जिस चीज को नहीं जानते हो वो विभीषण से पूछ लेना और विभीषण ने बताया तो मुझसे पूछ लेना, सब बात बता देंगे विभीषण, तुमको सब बात ठीक ठीक बता देगा, लेकिन एक काम तुमको करना होगा कि तुम जाकर राजा रावण से जैसा तुम देखोगे वैसे की वैसी बात कहोगे। राम जी ने कहा कि दूत को कोई मारे नहीं, दूत के द्वारा कभी कभी बिगड़ा हुआ काम सुधर जाता है, हे बांदा यदि ये दूत जाकर हमारी असली सेना का वर्णन करेंगे तो रावण के मन में बड़ा भय पैदा होगा, संभवतः बिना रक्तपात के बिना युद्ध के रावण सीता को दे भी सकता है। यद बलम तुम समाश्रित्य सीता में हितवानसी, राम जी ने कहा कि हे सुख सारण तुम दोनों ध्यान से सुनो, रावण को जाकर ये बोलना मेरी ओर से कि जिस बल को लेकर तुमने सीता का हरण किया था उस बल को आज प्रकट रूप से दिखाने का मौका आ गया है, उस समय में तुमने छिपा करके अपना बल दिखाया था, आज प्रकट रूप से अपना बल दिखाओ, कल लंका के अंदर क्या होने वाला है इस बात के लिए तुम तैयार हो जाओ, परंतु आज तो एक बीच में रात है, इस रात रात में तुम आनंद से सोच लो विचार लो, तुम्हारे मंत्रियों से तुम सलाह कर लो, रावण मैं तो क्रोध में भरा हुआ अपने बाणों को तुम्हारे पर छोड़ने के लिए तैयार हूं, परंतु ये सब तुम्हारे विचार करने के बाद में करूंगा। इस प्रकार से उन दोनों को छोड़ा सुख और सारण वहां पर राम जी महाराज की जय करके रवाना हो गए और वहां जाकर उन्होंने राक्षस राज से कहा, महाराज जब वहां गए तो विभीषण जी ने हमको देख लिया, हमको पकड़ लिया गया, हमको एक स्थान पर ले जाकर चार बांदरों ने बुरी तरह से मारा पीटा, हम जोर से चिल्लाए राम राघव राम राघव राम राघव पाहिमाम चिल्लाए, तो उस समय में राम जी ने बड़ी कृपा की, उन्होंने आकर के हमको छुड़ा दिया। देखो राम लक्ष्मण विभीषण और सुग्रीव ये चार जहां इकट्ठे हो करके और लंका को यूं देख रहे थे, उस समय महाराज हमारे तो एकदम पसीना पसीना हो गया कि अब ये आपकी लंका समाप्त हो गई है, ये बानर तो इस प्रकार से बल से क्रोध से देखते हैं लंका को, इनको तो केवल एक आज्ञा मिलनी चाहिए उत्पात के, ऐसा लगता है जैसे गाजर मूली की तरह से उखाड़ दे लंका को, पर्वत सहित उखाड़ दे और उखाड़ करके और इसको उल्टा पुटा समुद्र में ही डुबो दे, उल्टी कर दे लंका को, इतना इतना इनमें उत्साह आया हुआ है। राम के पास क्या शस्त्र है मैं कह नहीं सकता हूँ, राम के पास तो धनुष और बाण है, इसके अलावा क्या शस्त्र है, गुप्त शस्त्रों तक हमारी पहुंच नहीं है, पर महाराज लंका की रक्षा में तो केवल आप एक हैं, लेकिन लंका का नाश करने के लिए तीन हैं, आप इन तीन के सामने अकेले कैसे ठहरेंगे? राम के अलावा लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण, कैसे आप ठहरेंगे? महाराज, हम तो आपसे बात बोलते हैं कि आप विरोध मत कीजिए, आपकी सेना बांदरों के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि बांदरी सेना में अपार उत्साह है और आपके लंका के अंदर युद्ध से सब लोग डर रहे हैं। एक बानर के उत्पातों का भय अभी तक बैठा हुआ है और वहां तो वो उस बानर की कोई गिनती भी नहीं है, ऐसे ऐसे बानर आए हुए बैठे हैं। अतः महाराज, अलम विरोधाय समो विधीयताम, विरोध से पार नहीं पड़ेगी। एक काम करो, आप राम आपके घर आ गए, अतिथि हो गए, आप राम के पास हमारे द्वारा सूचना भेजाओ कि राम तुम हमारे अतिथि हो और जितने बानर हैं सब मेरे आज अतिथि हैं, आप बड़े प्रेम से माला ले जाओ, फूल माला ले जाओ, और फूल माला ले जा करके और बड़ा अच्छा आसन ले जाओ, बड़े अच्छे तिलक की सामग्री ले जाओ, साथ में सीता जी को ले जाओ और आप कहो कि हे राम, आप हमारे बड़े माननीय अतिथि हैं, हम आपका अतिथि सत्कार करते हैं और ये वस्तु हम आपको अर्पित करते हैं। आप सीता को अपने हाथ से राम जी को अर्पित करके और फिर सीता और राम को बड़े सम्मान के साथ आप नगर में लाओ और इनकी बड़ी अच्छी भव्य यात्रा निकालो और बंदर भी आपके साथ, राक्षस भी साथ, सब यहाँ हिल मिल करके खूब बड़ा राम जी के शुभावगन का उत्सव मनाओ और उसके बाद राम जी महाराज सीता को लेकर बड़े प्रेम से जाएं, ऐसा आप यहाँ उत्सव मनाओ। रावण ने कहा कि सुखसारण, तुम्हारे ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, तुम लोग बंदरों के पास जाते हो तो भ्रमित होके आते हो, तुम्हारे ये बंदरों का नशा छा गया, तुम क्या बोलते हो? देवता लोग आकर के कहें तो मैं बात मानने वाला नहीं, बंदरों से डर गए, सीता को दे दूं, राम को अतिथि बना लूं, राम की पूजा कर लूं, बस इतना ही हो गया, ये कोई बात नहीं है। को नाम राम सपत्नो माम समरे जेतु मरती, ये राम नाम की क्या एक ऐसी चिड़िया आ गई जो हमको युद्ध में जीतेगी? कुछ नहीं, तुम्हारा राम हमारे सामने कुछ नहीं है, तुम हमारे बल को नहीं जानते। अच्छा, ये जो बानर हैं, जरा इसके विषय में बताओ तो सही, कौन कौन बानर कैसे कैसे हैं, जरा हमको परिचय तो दो। तब वहां वो को महाराज, ऊपर चलो, ऊपर छत के ऊपर चलो, अब ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही बहुत ऊंची छत, वहां जाकर के और एक सफेद छत वहां पर जाकर के दस दिए, रावण बैठ गया और सुख और सारण वे वहां पर खड़े खड़े उनको परिचय देते हैं। रावण पूछता है, वो ये बंदर है, इनमें से तुम किन किन के नाम जानते हो, इनमें कितना बल है, कितना उत्साह है और इनकी क्या संख्या है, ये जरा हमको सुनाओ। अब भाई देखो, सुनो आप महाराज, ये जो सामने सारी बांदर सेना के आगे जो लंका को बार बार ऊपर से नीचे तक, बाएं से दाएं तक यूं देख रहा है, जिसकी आंख बिल्कुल भी पलक नहीं मार रही है, वो हजारों हजारों यूथपों का स्वामी है। यूथप बोलते हैं बहुत बड़े यूथ समुदाय उसका स्वामी, ऐसे लाखों यूथपों का स्वामी, और जिसने पत्थरों को अपने हाथ में ले ले करके और बड़े कला के साथ में ये पुल बनाया है, नहीं, जिसने पुल बनाने में नल को बड़ी सामग्री दी है, ऐसा ये नील नाम का बानर, ये महाराज अकेला ही लंका को ध्वस्त करने का संकल्प ले चुका है। अरे लंका को मैं अकेला ध्वस्त करूंगा, आप मेरा पौरुष देखो। हे महाराज, जो अपनी बार बार यूं भुजाओं को ऊपर नीचे कर रहा है और जो लंका की चारों, जो लंका को एक टक दृष्टि से देख रहा है और महान बदल के समान है, और जो बार बार ताल ठोकता है, जिस जो क्रोध के मारे पूंछ को उठा उठा करके पटकता है, वह बाली पुत्र अंगद है, जो अपनी भाषा से आपको बार बार युद्ध के लिए ललकार रहा है। ये बाली पुत्र साक्षात बाली जैसा ही है। राम के कार्य के लिए इसने अपने प्राणों का उत्सर्ग करने का संकल्प ले लिया है और ये सारे के सारे बानर इसी अंगद के अधीन रहने वाले हैं। हनुमान वगैरह सब अंगद के अधीन हैं। और ये जो एक आपको बड़ा विशाल शरीर वाला बानर दिखाई देता है जो अग्नि के समान देदीप्यमान है, ये नल है। इसी नहीं ये समुद्र बनाया था, समुद्र के ऊपर पुल बनाया था और इसी के कारण से ये बंदर उछलते कूदते और नाचते गाते झूमते आपके यहां पर आ गए हैं। और जो बार बार अपने दोनों हाथों को लेकर यूं मसल रहा है और मसलने के कारण से जिसके शरीर में क्रोध पैदा होकर के चिंगारियां आ रही हैं, ये श्वेत नाम का बानर है। और ये सुग्रीव के पास कभी आता है कभी जाता है। ये सुग्रीव से अकेला ही आज्ञा मांगने के लिए, आप सब मेरा पौरुष देखो इतने के लिए ये इनके पास बार बार आ रहा है जा रहा है। और ये जो सामने आपको पर्वत के समान विशाल शरीर वाला दिखता है, ये गोमती नदी के किनारे रहने वाला संरोचन नाम के पर्वत का आश्रय लिया हुआ कुमुद नाम का यूथप है जो कि अपने वहां पूरा शासन करता है। ये सामने हजारों बंदरों का स्वामी चंड नाम का बंदर है जिसके बाल पीले सफेद ताम्र वर्ण वाले हैं और ये चंड संग्राम का अभिकांक्षी है। ये बंदर कहते हैं कि हमको जीवन में बड़ा संग्राम नहीं मिला, छोटी छोटी लड़ाइयों से हम क्या करेंगे, बड़ा संग्राम नहीं मिला। ये इसी आशा के साथ आए कि लंका में आज हम अकेले युद्ध करके हमारे कई दिनों की युद्ध करने की जो खाज है वो मिटाएंगे। ये जो सिंह के समान सफेद बाल वाला बार बार लंका को जैसे कोई अपने नेत्र से ही भस्म कर देगा, ये विंध्याचल पर्वत के सह्य पर्वत पर रहने वाला रंभ नाम का यूथप है और इसके पास 133,000 बंदर हैं, इनका ये स्वामी है। और जो बार बार अपने कानों को यूं फड़फड़ाता है और जो बार बार ये उबासी लेता है, उबासी के द्वारा जिसके बड़े बड़े दांत आपको दिखाई दे रहे हैं और जो कई बार अपने अपने मुंह के ऊपर यूं हाथ फेर रहा है जिसके नाखून भी आपको लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये सर्व नाम का बानर है। ये महाराज पर्वतों को गेंद के समान रोज उठा उठा करके इनके साथ खेला करता है। ये आकाश में मेघ के समान दिखाई देने वाला बानर जो कितने बंदरों का स्वामी हमको पता नहीं है, ये पारियात्र पर्वत पर रहने वाला पनस नाम का यूथप है। और क्या बताएं, ये 50 लाख बांदरों का स्वामी है। और ये जो सामने आपको एक और दिखाई देता है सागर के समान दुर्धर्ष, ये विनत नाम का यूथप है। ये महाराज वेणा नाम की नदी का जल पीता है और ये 60,000 बांदरों का स्वामी है। और ये जो बार बार अपने नासिक क्रोधन नाम का बानर है, इसके पास कितने बानर हैं पता ही नहीं है। और ये गौरवर्ण वाला गवय नाम का बानर है, ये क्रोध से आपकी तरफ देख रहा है, ये 70 लाख बानरों का स्वामी है। और महाराज मैं उन बंदरों के विषय में आपको बता रहा हूं जो खास खास विशेष विशेष बानर है जिनका मैंने परिचय प्राप्त किया है। ये हर नाम का बानर है जो वृक्षों को उखाड़ करके और बहुत दूर तक फेंकने में बड़े समर्थ बानरों को अपने साथ रखता है। ये नील मेघों के समान, कज्जलों के समान, काजल के समान काले काले बंदरों को अपने साथ में रखता है, काले मुंह वाले बंदर। और नहीं, काले काले जो ये रीछ हैं, ये रीछों के जो स्वामी असंख्य जिनकी कोई संख्या नहीं है और समुद्र के आर पार जो सब जगह छाए रहते हैं, हे राजन ये बहुत बड़े रीछ के बेटा एक तो धूम्र और एक इनके छोटे भाई जामवंत, ये दोनों नर्मदा नदी का जल पीने वाले और सब रीछों के स्वामी हैं, और इनके साथ में असंख्य रीछ आए हुए हैं। इनका भाई जामवंत इतना बलवान है और इतना बूढ़ा है कि जिस समय में समुद्र मंथन किया गया था उस समय में इन्होंने बड़ी बड़ी औषधियां लाकर समुद्र में डाली थी। और ये वे जामवंत हैं जिन्होंने, आपने सुना होगा कि विष्णु ने वामन बनकर के बलि को जीता था, उस समय उन्होंने परिक्रमा लगाई थी। वे जामवंत जी यहां युद्ध के लिए बड़े उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो अब युद्ध करना ही है। और ये जो सामने आपको अनेक यूथपों का यूथप कितनी बड़ी उसकी जगह है, और वो एक बार इंद्र से युद्ध करने लग गया, इंद्र को हरा दिया था, वो दंभ नाम का बानर किस प्रकार से उत्साहित हो रहा है। और महाराज जो बंदर यूं चलता है, चलते 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 उसके कोक से कभी कभी समुद्र के यूं रगड़ लगती है, समुद्र के पर्वत के, तो पर्वत यूं डगमगाने लगता है। केवल यूं चल रहा है, स्वाभाविक टक्कर लगी उसे, समुद्र ये पर्वत जो डगमगाता रहता है। और जो एक योजन तक कोई वस्तु रखी हो, खड़ा खड़ा उस वस्तु को ले आता है, चार कोस से वस्तु खड़ा खड़ा ही लेवे, और कितने फेंकने लगे तो कितने कोसों वो वस्तु फेंके, कितने ही योजन। और वो पैर रखता है तो वो योजनों से कम पैर नहीं रहता, उसके डग भी चार कोस जितने उसके पैर हैं। ऐसा ये सनादन नाम का बानर है। और दूसरा महाराज, गंधर्व कन्या से पैदा होने वाला देवासुर युद्ध के अंदर जिसने देवताओं का पक्ष लिया था, और उस समय में वैश्रवण नाम का राजा था, उस राजा के पक्ष से देवताओं का जिसने साथ दिया, वो क्रथन नाम का बंदर है जो युद्ध के अंदर सबका मान मर्दन कर देने वाला है, और जो गंगा जी के पास में रहने वाला है, और जो कभी कभी हाथियों को देखकर यूं दोनों की सूंड को आपस में बांध करके और यूं धक्के से गुड़ा देता है, ये परमाथी नाम का बानर। इसके पास में भाई 1,00,000 को 1,000 से गुणा करो, इतने बानर हैं। और इसके अलावा ये जो लंगूर हैं, काले मुंह वाले बंदर, उनका स्वामी गवाक्ष है। इसके पास में 100,00,000 माने 1,00,00,000, 1,00,00,000 बंदर हैं काले मुंह वाले, और सेतु बंध में इन्होंने सबसे ज्यादा सहायता की है। और सुमेरु पर्वत के ऊपर जो रहने वाले हैं, और क्या बताएं, सुमेरु पर्वत पर रह करके और जो सूर्य की किरणों के समान सफेद अपने बाल जिसके शरीर के ऊपर उद्भासित हो रहे हैं, और जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी यस्य प्रस्थम महात्मानो न त्यजन्ति महर्षय, वे बड़े बड़े महर्षि लोग भी जिसे रास्ता वगैरह दे दिया करते हैं, और जो सुमेरु पर्वत के पास रहने वाले हैं, विशेषता से सुनहरी भूमि में रहने वाले हैं, वे यूथपों के यूथ महाराज केसरी हैं, जो 60,000 बंदरों के साथ सुमेरु पर्वत की तरफ घूमते हैं, और ये वे ही केसरी हैं जिनका पुत्र हनुमान है। और इनके साथ में और भी बंदर हैं जिनका कोई किसी प्रकार से उपमा कहना बनता नहीं है। ये जो शतपली नाम का बानर, ये तो महाराज जमीन पर पैर रखता है तो सावधानी से रखता है कि जमीन नीचे न धंस जाए, इस प्रकार से जमीन के ऊपर सावधानी से चलता है। इन सब के मन में आपके ऊपर विजय प्राप्त करने की प्रबलतम इच्छा हो रही है, इसलिए राम प्रियार्थम प्राणानाम दयाम न कुरते हरि, इनके मन में बहुत दया है, लेकिन लंका को देखकर और आपको देखकर इनके चित्त से दया नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि हमने बहुत दया की, बहुत दया करना जानते हैं, लेकिन रावण पर हम दया नहीं करेंगे, इस प्रकार से इन बंदरों की स्थिति है। अब महाराज ये सारी पृथ्वी को उलट पुलट करने में समर्थ है, आपकी लंका की तो ये कोई गिनती नहीं करते हैं। महाराज इसमें कई बानर तो इसलिए आए हैं कि देखे कौन एक बंदर है जो सबको नष्ट कर सके। और सुख कहने लगा कि महाराज ये जो आपके सामने बंदर कोई गंगा के यहाँ से आए हुए, कोई हिमालय के यहाँ से आए हुए, कोई यमुना के यहाँ से आए हुए, कोई बड़े बड़े वट वृक्षों के यहाँ से आए हुए, ये अनेक रूप बनाने वाले देवताओं के समान युद्ध करने वाले ये बंदर जो विशेष विशेष बंदर हैं, इनकी संख्या बताते हैं, इनकी संख्या है भाई 21,000 करोड़। ये इतने बंदर हैं और 1,000 शंकु और 100 वृंद, ये सब ऐसे ऐसे यूथपों के यूथप हैं, इनकी संख्या है। और महाराज ये सुख बोलते हैं कि ये मैंद और द्विविद ये दोनों के दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा अमृत को पिए हुए हैं, अतः ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। और महाराज जिस बंदर के पास में कोई ऐसा श्रेष्ठ बंदर नहीं जो उससे सलाह नहीं लेता हो, जो राम के पास में खड़ा हो, सब बंदर यहां तक कि सुग्रीव भी, यहां तक कि आपके भाई विभीषण भी जिससे बार बार बात करते हैं, सब लोग जिसके सब जिससे सलाह करते हैं, उसको तो शायद आप जान गए होंगे। ये वो हनुमान है जो बलपूर्वक समुद्र को लांग करके अकेले लंका में आए थे और जिन्होंने आपकी लंका के अंदर धू धू करके अग्नि से इसको प्रज्वलित कर दिया था, वो केसरी का बेटा वायु का पुत्र हनुमान है जिसने समुद्र को लांगा है। इस हनुमान की क्या बात कहे महाराज, ये हनुमान छोटा सा था उस समय में माँ के पास में, माँ में मुझे भूख लगी है, माँ गोद में लिए हुए थे, बेटा अभी तुझे दूध पिलाते हैं, माँ उसको दूध पिलाए इससे पहले जरूरी काम से माँ अपने गुफा में गई किसी कारण से, बच्चा वहां पर छोड़ के गई, बच्चा वहां पर रोने लगा हो और रोते रोते मुझे भूख लगी माँ, मुझे भूख लगी माँ, ऐसे रोया और आकाश में उसने सूरज को देखा उगते हुए, सूरज को उद्यंतम भास्करम दृष्ट्वा बालः किल बुभुक्षितः है, उसी समय वो छोटा सा बच्चा लपक पड़ा और लपकते लपकते 3,000 योजन माने 12,000 कोस ऊपर चला गया और ऊपर जाकर के वो सूर्य की तरफ दौड़ा। उस समय में इंद्र ने देखा कि अरे बालक तो जाने क्या कर देगा, उसने इंद्र ने अपना वज्र था उससे उसको जो है डाल करके उसको नीचे पटक दिया, नीचे पड़ने से छोटे से बालक की ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी होने से इसको हनुमान कहने लगे। ऐसा इसमें पराक्रम, क्या पराक्रम है ये सब आप जानते हैं हनुमान का, दोबारा कहने का कोई। हाँ दूसरा, हाँ दूसरे के विषय में बताओ, रावण ने कहा और दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। कि रावण के कान हनुमान जी की बात सुन नहीं सकते थे, कहा कि और दूसरों के बारे में बताओ। कि वो जो हनुमान के पास में एक श्याम वर्ण वाला और बड़ा सुंदर स्वरूप वाला, हाथ में धनुष बाण लिया हुआ, जो कि ब्रह्मास्त्र को जानने वाला और वेद वेदांत को जानने वाला, जो अपने बाणों के द्वारा आकाश को फाड़ दे, जो पृथ्वी के टुकड़े कर दे, जो इंद्र को कुछ भी न समझे, जिसकी भार्या का आपने हरण किया, उसका नाम राम है। अच्छा वो राम है कि हाँ महाराज वो राम है। राम के पास में राम के जैसा ही सकल सूरत वाला लेकिन थोड़ा गौर वर्ण वाला वो लक्ष्मण है, सदा भाई के हित में रहने वाला है, ये युद्ध में नीति में सब प्रकार से बड़ा कुशल है, ये किसी प्रकार से राम पर आई हुई आपत्ति को नहीं सह सकता है, ये एक तरह से राम का बाहर का प्राण है और ये राम के लिए जीता है, राम के लिए ही मरता है, ये बिल्कुल रामा राम के अंदर ही समर्पित हुआ हुआ है। और महाराज राम और लक्ष्मण से घिरा हुआ सुग्रीव के पास खड़ा हुआ ये आपके लंका का आप ही का छोटा भाई विभीषण, इस विभीषण का लंका के राज्य के लिए राम जी ने बंदरों के बीच में सुग्रीव के द्वारा अभिषेक कराकर इसका टीका करवा दिया है, ये वो विभीषण। और महाराज जिसको आप अविचल भाव से देख रहे हैं और जो यश में बुद्धि में तेज में बल में कुल में किन्हीं से भी जो कम नहीं है, और जो किष्किंधा के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर रहने वाला है, सब बांदरों पर जिसका एक विशेष कठोर अंकुश है और जो दिव्य माला धारण किया हुआ है, वो बाली को मार करके अपने राज्य को प्राप्त करने वाला, अपने स्त्री को प्राप्त करने वाला ये सुग्रीव है जो बांदर के राजा है। अब महाराज जरा मैं आपको संख्या की जानकारी देता हूं। देखो महाराज, 100 लाख को 1 करोड़ बोलते हैं, और क्या बताएं, 1000 करोड़ को 100 से गुणा करो वो शंकु कहलाता है, और 1 लाख शंकु महाशंकु कहलाता है, 1 लाख महाशंकु वृंद कहलाता है, 1 लाख वृंद महावृंद कहलाता है, 1 लाख महावृंद पद्म कहलाता है, 1 लाख पद्म महापद्म कहलाता है, 1 लाख महापद्म खर्व कहलाता है, 1 लाख खर्व महाखर्व कहलाता है, और 1000 खर्व समुद्र कहलाता है।